स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उपाध्याय नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने प्रिय मित्रों और परिवारों के साथ कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से उपाध्याय नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर एसाव अर्थात एदोमी जाति से घृणा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी और दयालु है, अनुग्रहकारी है, परंतु वह न्यायी परमेश्वर भी है। वह हमारे जीवन की उन बातों को देखता है और चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें और अपने जीवन में उसको जगह दें, उसका आदर करें, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हम एदोम के बारे में देख रहे हैं, तो इससे पहले कि आज हम उन विषयों को और अधिक सीखें और जानें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके मधुर और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम अवध्या की पुस्तक से आगे की बातों को सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सुनते और सीखते हैं, रेडियो के माध्यम से आपके वचनों की गंभीरता को जानना चाहते हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि प्रत्येक पर आप अपने आशीष प्रदान करें, एक एक को आप अपनी बुद्धि और ज्ञान दें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, चिंता और तनाव में है। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, आप उन्हें स्पर्श करें, उन्हें शांति दें, उनकी बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दें, ताकि प्रभु वे आपकी ओर फिरें, आपसे प्रेम करें और जानने पाएं कि आप उनके चंगा देने वाले परमेश्वर हैं, आप उनके जीवन को चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। पिताजी, आज के अध्ययन पर भी आप अपने आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ओबद्याह की पुस्तक में एसाव और याकूब के बारे देख रहे हैं। एसाव और याकूब जो दो भाई थे, एसाव से एदोम जाति उत्पन्न हुई और याकूब से इसराइल जाति, परंतु एदोम ने इसराइल का साथ देने की अपेक्षा सदा ही उसके साथ बैर निभाया और उसके संकट काल में भी उसे लूटा, तथा इतना ही नहीं वह आनंद भी मनाया। इसका कारण था कि वे अपने आप पर और अपने सुरक्षित नगर पर घमंड करते थे, और घमंड के कारण परमेश्वर को वे तुच्छ समझते थे। अतः परमेश्वर कहता है कि वह उसे ऊंचाइयों पर से गिरा देगा। उबद्याह उसके सर्वनाश की भविष्यवाणी में आगे कहता है, आइए हम पढ़ेंगे ओबद्याह की पुस्तक एक अध्याय उसके चार पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। ध्यान दीजिए, धर्मशास्त्र में उकाब को देवीय चिन्ह माना गया है। उन्होंने शैतान के समान घमंड करके ईश्वर बनना चाहा कि परमेश्वर के काम को अपने हाथों में ले लें। तब हम आगे देखते हैं, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, यह भी शैतान का पाप था। उसने भी तारों से ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करना चाहा था। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे वहां से भी नीचे गिराऊंगा। मेरे प्रियो, आज कितने लोग अपने जीवन का स्वयं संचालन करना चाहते हैं, जैसे वे ही स्वयं में परमेश्वर हैं। उनकी समझ में उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है ही नहीं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में पतवार नहीं लगाई है कि हम स्वयं अपना नियंत्रण करें। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके पास आकर उद्धार प्राप्त करें, तदुपरांत वह हमारी बागडोर को संभाले। परंतु जब हम स्वयं अपना जीवन चलाना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के स्थान में आ जाते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन का संचालन स्वयं से करते हैं। हम चालक की गद्दी पर बैठ जाते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन की उड़ान भरते हैं। यह घमंड है और एक घातक पाप भी है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अनंत विनाश की ओर अग्रसर है। वह अपने जीवन में विनाश की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, एक बार फिर सूक्ष्म परीक्षण कीजिए। एदोम में एसाव खड़ा है, आपको क्या दिखता है? आप एक मानवीय पशु को देखते हैं, उसकी भयानक कुरूपता को देखते हैं। मेरे प्रियो, आप भी वहां पर होंगे तो आप क्या करेंगे? हम तो पशुओं से विकसित हुए हैं और आप हमें पशु बना रहे हैं, आप यही कहेंगे। सच यही है मेरे मित्रों, सच यही है। हम ऊपर नहीं नीचे गिरते हैं। आज रेडियो, टीवी तो क्या, स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि मनुष्य क्रम विकास के द्वारा पशु से आया है। मैं विकासवाद पर वाद विवाद करना नहीं चाहता, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर रहित विकासवाद को निराधार कहता हूं। जीव वैज्ञानिक डॉक्टर एडविन कॉन्क्लिन ने कहा है, जीवन का दुर्घटनावश उत्पन्न होने की संभावना उतनी ही है जितनी कि किसी मुद्रालय में विस्फोट द्वारा शब्द कोण प्रकट होने की है। विकासवाद के कारण मनुष्य सोचता है कि वह सबसे ऊंचा है, जो निराशवाद है। आज की आत्महत्याओं का कारण मैं विकासवाद को ही मानता हूं। डॉक्टर एल्बर्ट आइजेंस्टाइन ने कहा था, वह जो अपने और अपने साथी के जीवन को अर्थहीन कहता है वह दुर्भाग्यशाली ही नहीं, जीवन के लिए लगभग अयोग्य है। यह एक अच्छा कथन है। मेरे प्रियो, उबद्या की यह अद्भुत पुस्तक वास्तव में विकासवाद का मुंह तोड़ उत्तर है, और यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि वह एदोम के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करेगा। अमेरिका में एक संग्रहालय है जिसमें उन्होंने मूर्तियों द्वारा चित्रण किया है कि मनुष्य 100,000 वर्ष से 200,000 वर्ष पूर्व कैसा था। वह पशुओं के समान दिखता था और उन्हीं के समान रहता था। उनके पास उस युग के मानव के फोटो तो नहीं थे, परंतु उन्होंने उसकी कल्पना की है और उसे संजो कर रखा है। मेरे प्रियो, अब आप ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर क्या कहता है। 100,000 वर्ष पूर्व जाने की क्या आवश्यकता है? आज भी मनुष्य जानवरों के समान जीवन जी रहा है, बस अंतर यह है कि वह उनके समान दिखता नहीं है। यह इसलिए कि वे उस स्तर से नीचे गिर गए हैं जिस स्तर पर परमेश्वर ने उनकी रचना की थी, क्योंकि वे परमेश्वर से अलग जीवन जी रहे हैं। कम से कम पशु न तो अपनी पत्नी को मारते पीटते हैं, न ही अपने बच्चों को गाली गलौज करते हैं या गोली मारते हैं, न हत्या करते हैं, न समलैंगिक संबंध रखते हैं। आज का मनुष्य पशुओं से भी अधिक गिरा हुआ है। मनुष्य ओबद्याह के युग में भी ऐसा ही था, जिसका मुख्य उदाहरण एदोम जाति है। एक सुअर घूमता हुआ शराब की भट्टी के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग उसे देख रहे थे और वहां पर जौ गिरा हुआ था। उसने वह जौ खा लिया और बिखरी हुई शराब को पानी समझकर पी लिया। उसे नशा हो गया तो वह वहीं गिर पड़ा। 24 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वहां से वह उठा और यह कहते हुए चल दिया, मैं मनुष्य की भूमिका कभी नहीं निभाऊंगा। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही बहुत सारे लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। वे परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते, परंतु अपने रास्ते पर अपना जीवन बिताना चाहते हैं, और किसी न किसी रूप में वे अपने जीवन में हानि अर्थात विनाश को ला रहे हैं। मेरे मित्रों, मनुष्य पशुओं से नहीं आया है। उसकी उपलब्धियां कैसी महान क्यों ना हो, वह परमेश्वर से अलग होकर पशुओं से भी अधिक नीचे गिर सकता है। याद रखें, परमेश्वर ने एदोम से कहा था, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। मेरे मित्रों, आप चाहे कितने भी ऊंचाइयों पर क्यों न चले जाएं, मान सम्मान धन दौलत क्यों ना आप प्राप्त कर लें, परंतु इस बात को ध्यान रखें कि आप मनुष्य ही हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं, और आपको परमेश्वर की अधीनता में ही जीवन व्यतीत करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चय जानिए कि आप अपने जीवन में विनाश को न्योता दे रहे हैं, अर्थात आप विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि ओबद्या क्या कहता है। ओबद्या के पुस्तक 1:5 में लिखा है, यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान से आप सुनिए कि क्या कहता है। ओबद्या कहता है कि चोर केवल आवश्यक वस्तुओं की चोरी करके अन्य सामान छोड़ देता है, और अंगूर तोड़ने वाला भी सब अंगूर नहीं तोड़ता है, कुछ रहने देता है। परंतु जब परमेश्वर एदोम को दंड देगा, तब वह उसका सर्वनाश कर देगा। जी हाँ, परमेश्वर घमंड बर्दाश्त नहीं करता है, और वह उसे नाश करता है और सर्वनाश करता है। चाहे आप हो या मैं हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख दीन और नम्र होकर के आए, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, अपने मनों को फिराएं, उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम उसकी संगति में बने रहें। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि एदोम परमेश्वर के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, और वह घमंड कर रहा है अपने आप पर और अपने सुरक्षा पर कि उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि आगे ओबद्या क्या कहता है। 1:6 में लिखा है, परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया है। यह ओबद्या की पुस्तक का मुख्य पद है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। लिखा है, एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है। जैसा हमने देखा है कि परमेश्वर एसाव का सूक्ष्म परीक्षण करता है और कहता है, परमेश्वर के वचन से उसको देखो, मैं उससे घृणा करता हूं। मैं उससे घृणा क्यों करता हूं? उसके घमंड के कारण। उसने मुझसे मुंह मोड़कर स्वयं जीवन जीने का प्रयास किया है। उसने मेरे बिना जीने की क्षमता का दावा किया है। यह उसका घमंड है। तब वह कहता है कि उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगा कर निकाला गया। मेरे प्रियो, मैं स्पष्ट कहता हूं कि जब मैंने एसाव के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा, तब मैं उसके बारे में अधिक नहीं समझ पाया था, परंतु यहां मैं भली भांति समझ रहा हूं। इस सूक्ष्मदर्शी अध्याय के द्वारा मैं उसका उत्पत्ति में जो व्यक्त वर्णन है उसको पढ़ता हूं, तो समझ में आता है कि जेठा पुत्र होने के कारण उसे परमेश्वर का याजक होना था, जिसका अर्थ है उसे परमेश्वर के संबंध में रहना होता है। परंतु उसने परमेश्वर के संबंध से बढ़कर एक कटोरा दाल को अधिक महत्व दिया था। मेरे प्रियो, ऐसी दशा में तो आप सुअर से भी बदतर हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़ करके कैसे दूसरों के पास जा सकते हैं जिसे आप जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि एक बैंक का अधिकारी आपको बुला करके 1,00,000 रुपए का चेक देना चाहता है आपके गरीबी को मिटाने के लिए, आप उसके पास न जाकर हाथ में कटोरा लेकर आप सड़क पर भीख मांगते हैं, तो यह किसकी समस्या है, आपकी या उस व्यक्ति की? यहां पर हम यही बात देख रहे हैं कि एदोम अर्थात एसाव परमेश्वर के निकटता में आना छोड़ करके वह संसार की ओर भाग रहा है। मेरे मित्रों, आज हम में से कई लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है, वे सब कुछ कर सकते हैं बिना परमेश्वर के, परमेश्वर की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को आपने देखा होगा कि जो परमेश्वर से दूर रह करके जीवन जीते हैं कुछ समय के लिए तो वे बहुत संपन्न दिखाई देते हैं, परंतु थोड़े समय के बाद उनके जीवन में विनाश और त्रासदी आती है। वे नष्ट हो जाते हैं, उनके परिवार का शांति और सुख सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं यहां पर आपको डराना नहीं चाहता, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़े समय के सुख के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर को भी बुरा भला कह देते हैं। एदोम के जीवन में घमंड आया और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, और यही कारण है कि परमेश्वर एदोम से कहता है कि वह उसे दंड देगा, वह उससे घृणा करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में इन्हीं बातों को सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की निकटता में आएं, अपना जीवन उसके साथ बिताएं, उसके साथ अच्छे संबंध में रहें। आइए हम पढ़ेंगे ओबद्याह के पुस्तक 1:7, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया है, जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं, उसमें कुछ समझ नहीं है। उस युग में शत्रु एदोम को अछूता छोड़कर आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि वे पेत्रा में घुसे सुरक्षित बैठ जाते थे, परंतु नबूकदनेज़र ने अपने भेदिए उस नगर में प्रवेश करवाए और उनकी सहायता से उस नगर को जीत लिया। परमेश्वर ने नबूकदनेज़र को साधन बनाकर याकूब के वंशज इस्राएल को दंड दिया। उसी प्रकार उसने एसाव की संतान एदोम को भी नबूकदनेज़र के द्वारा ही दंड दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को दंड देने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से अपने लोगों को दंड देता है, अर्थात न्याय करता है। हम उसे कुछ भी नहीं कह सकते। आइए हम आगे देखें, ओबद्याह 1:8 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नष्ट न करूंगा? ध्यान दीजिए, एदोम चट्टानों के नगर पेत्रा में सुरक्षित नहीं था, उन्होंने बुद्धि ज्ञान एवं अन्य विश्वास का भी विकास किया था। पुरातत्व की खोज से प्रकट हुआ है कि पहाड़ों पर उनके पूजा स्थल भी थे जहां वे नर बलि चढ़ाते थे। एदोम अपने ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध था। अय्यूब का मित्र एलीपाज, जिसके बारे में हम अय्यूब की पुस्तक 4:1 में पढ़ते हैं, मनुष्य दूर दूर से वहां ज्ञान की बातें सीखने आते थे। यर्मिया की पुस्तक 49:7 में भी हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि वह एदोम से बुद्धिमानों को और एसाव के पर्वत से ज्ञान की बातों को नष्ट कर देगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ज्ञान की बातों को और बुद्धिमानों को नष्ट कर सकता है। आप यह न सोचे कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और आप सुरक्षित हैं, परमेश्वर आपको वहां से भी ला करके नष्ट कर सकता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एसाव जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ और परमेश्वर के खिलाफ कार्य करता रहा, यहां तक कि उन्होंने नरबलि भी की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम नरबलि करें, मनुष्य को बलि चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वह चाहता है कि हम उसके निकटता में आएं, अपने पापों को मान लें, क्योंकि प्रभु यीशु को उसने इस जगत में इसलिए भेजा ताकि वह हमारे पापों के बदले में मरे, और वह हमारे बदले में बलिदान हो चुका है। इसलिए मुझे और आपको किसी और बलि को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे और आपको सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है और इस बात को अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मेरे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया। मेरे दुखों को उसने उठा लिया ताकि मैं उद्धार पाऊं, उस भयानक मृत्यु से, उस दर्द से बच जाऊं। उसने आपकी और मेरी, पूरे जगत के लोगों की सजा अपने ऊपर ले ली ताकि हम सब बच जाएं, जीवन पाएं। मेरे प्रियो, आज हम सबको उस महान परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग उसे जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है और वह चाहता है कि आप भी उसे जानें, उससे प्रेम करें और उसकी निकटता में आएं, क्योंकि वह आपको बचाना चाहता है, न कि नष्ट करना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है और उसका लाभ भी उठाया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करे कि आप प्रेमी, दयालु और अच्छे व्यक्ति बनने पाएं, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन करो इनका।